तृतीय दिवस है, तो आज आप जो श्रद्धालु भक्तगण आप उपस्थित हैं, सभी को मैं यहाँ उपस्थित होने के लिए विशेष स्वागत करता हूँ और श्री जगन्नाथ भगवान के श्री चरण में प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको उनके कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो। हरे कृष्ण। तो हम कल चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार कन्याकुब्ज निवासी कुलीन ब्राह्मण अजामिल का कैसे दुर्गति हुआ। केवल साधारण दृश्य से उन्होंने देखा एक साइड और बाद में सुना, और केवल इसी से उनके मनन हुआ और उनका कितने दुर्गति हुआ ये आपने कल सुने हैं। तो उन्होंने जब ये अत्यंत वृद्धावस्था में 18 साल उम्र में अपने बेड में पड़कर म्रियमाण अवस्था में जब जमदूतों उनके सूक्ष्म शरीर को फांस में बांध कर खींच रहे थे, विवश होकर के जो आपने बेटा नारायण को पुकारा था उसके फलस्वरूप चार विष्णुदूत ने आए थे, आकर के उनको रोके जमदूतों को और उनको पूछे क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो कल आपने सुने थे कि जमदूतों ने धर्मराज के दूत अपने आप को बताए, अपने आईडी प्रूफ भी दिखाए थे और अपने जो प्रशिक्षण प्राप्त किए थे धर्मराज से भली भांति उनको सुनाए विष्णुदूत को। उनका ये प्रवचन खटिया में सो करके अजामिल भी सुन रहा था। उन्होंने वेदोक्त नीति के साथ में धर्मराज से जो जो शिक्षा प्राप्त किए थे धर्म की नीति के हिसाब से उनको पापी प्रमाणित करते हुए और आपने कर्म के औचित्य बताते हुए ये पूरा बताते गए, पूरा हिस्ट्री अजामिल के हिस्ट्री के साथ और किस प्रकार धर्म की नीति है, धर्मराज किस प्रकार काम करते हैं, किस प्रकार पापियों को अपने साक्षी प्रमाण के साथ उनको दंडित किया जाता है, ये सारे वृतांत भली भांति विष्णुदूतों के सामने व्याख्यान किए। तो जमदूतों का इतने लंबा प्रवचन जो धर्म के नीति पर आधारित था, क्योंकि स्वयं धर्मराज के दूत थे, तो आपने जो काम करने के लिए आए थे वो उचित है, उसके उचितता को प्रमाणित करने के लिए बहुत बड़े लंबा व्याख्यान प्रवचन किए। विष्णुदूत उसको खड़े होकर सुन रहे थे। जब जमदूत ने सारे अपना पॉइंट बता चुके हैं और पूरा वैलिड रीजन दिए कि इसीलिए हम ले जा रहे हैं, आप हम क्यों रोक रहे हैं, ये हमारा कर्म है, हमारा धर्म है, हमको साथ देना चाहिए, ये पापी को हम ले जाएंगे, उसको लेकर नरक में उनको उचित नरक में दंड देकर शुद्धिकरण करेंगे, फिर दूसरा जन्म लेंगे, यही सिद्धांत है। तो इतने लंबा सैद्धांतिक प्रवचन जमदूतों के सुनने के बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि विष्णुदूत अब तक चुप होकर सुन रहे थे, अजामिल सीरियसली सुन रहा था, दोनों को देख रहा था दोनों ओर से। तो विष्णुदूत ने बोलना शुरू किए, विष्णुदूत का बोलना शुरू हुआ तो सुखदेव को सब बताते हैं वो क्या बताए। विष्णुदूत ने सबसे पहले ये कहे कि हाय हाय, ये क्या चल रहा है दुनिया में, साक्षात धर्म के दूत इतने अधर्म काम करने जा रहे हैं, कितने दुख की बात है, कितने खेत की बात है। और जमराज के दूत को सुनकर हैरान हो गए, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमको बोलते हैं कि हम अधर्म करने जा रहे हैं, हम धर्म का नीति संगत व्याख्या क्या, हमको सीधा बोलते अधर्म क्यों बोलते, ये बड़े दुख की बात है। आश्चर्य होकर उनको और देखने लगे, ये कैसे कह सकते हैं ऐसा। तो विष्णु दत्त ने अपने युक्ति प्रस्तुत किए, अन्य कहले अरे आप अपने को धर्म के दूत मानते हैं, तो आपको धर्म के बारे में अभी तक पता नहीं कि परम धर्म क्या है। कोई पाप करता है अवश्य, लेकिन पाप के प्रायश्चित आप बोले प्रायश्चित किया नहीं है। प्रायश्चित किया कितने प्रकार के होता है, कौन सा प्रायश्चित से कितना पाप के निराकरण होता है, इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं आपका। इस प्रकार अगर जो शासक हैं जिनके ऊपर साधारण लोग पूर्ण विश्वास करते हैं, वो इस प्रकार अन्याय अधर्म करे तो लोग किसका शरण मिलेंगे। क्योंकि आम आदमी को हमेशा एक नेता की आवश्यकता है। भगवान गीता में भी कहते हैं जज जदाचरति श्रेष्ठ तत्त एव इतरो जनः साजत प्रमाणं कुरुते लोकस्तत अनुवर्तते, कि कोई श्रेष्ठ पुरुष आवश्यकता है समाज में। सभी चाहते हैं एक मॉडल, यहां तक कि जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है गवार व्यक्ति भी आजकल तो दुनिया में कोई फिल्म स्टार हो या क्रिकेट स्टार हो या कोई नेता को अपना मॉडल मानते हैं, वो इसी के अनुसार अपना कार्य करते हैं। हम सब एडवर्टाइज में देखते हैं कोई कोई ऐसे लोगों को सेविंग क्रीम पकड़ते हैं या ब्लेड या ब्रश, तो लोग बोलते हैं अच्छा उन्हें इसको यूज करते, सभी हम भी उसी को यूज करेंगे, इसी को प्रमाण मान लेते हैं इस दशा पर। तो हमेशा साधारण लोग का ये सुख बुद्धि नहीं है कि धर्म और अधर्म के सिद्धांत को जान पाए, तो इसलिए उन्होंने हमेशा कोई श्रेष्ठ पुरुष के ऊपर निर्भर करते हैं। जो सत्पुरुष श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं उसी को मान लेते हैं, सही होगा उन्होंने किए तो कैसे नहीं होगा। इसलिए भगवान ने कहते हैं कि इसलिए समाज में हमेशा कोई नेतृस्थानीय व्यक्ति होना अति आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आम जनता स्वयं जो डिसाइड नहीं कर पाएंगे वो नेता के ऊपर से नेता के डिसीजन को मान लेते हैं, इसी को प्रमाण करके मानते हैं। सजत प्रमाणं कुरुते लोकस्तत अनुवर्तते, लोग में उसी प्रमाण को मान लेते, उन्होंने किया उनके बाद से। तो इसलिए जो श्रेष्ठ पुरुष होगा, जो नेतृस्थानीय व्यक्ति होगा, ये स्वयं को धर्म के सिद्धांत के अनुसार सत आचरण करना चाहिए, क्योंकि उनके आचरण हजारों लोगों को नजर में आता है, उन्होंने उसको अपने मॉडल मानेंगे, इसलिए उनको हिसाब से अपना काम करे, वही लोग देख रहे हैं क्योंकि नेता है। तो इसलिए उनको कितने सतर्क से अपना कार्यवाही करना चाहिए। आजकल हम देखते हैं गुरुजन लोग होते हैं, टीचर लोग अपने स्टूडेंट को क्या पढ़ाते हैं और संस्कार शिक्षा देने के लिए बोलते हैं देखो बच्चों स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ, धूम्रपान करना शरीर के लिए हानिकारक है, माने और खुद चेन स्मोकर होंगे, बताओ कौन मानेगा उनको। इस प्रकार से तो जो स्वयं आचरण नहीं करते हैं और प्रचार करते हैं बोलते हैं तो उनका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए कहा गया कि प्रचार आचरण के साथ होना चाहिए, जो आपने आचरण के द्वारा सिखा देते हैं वही आचार्य हो सकते हैं। तो लेकिन आजकल धर्म के सिद्धांत को पालन कौन करते हैं, जो तथा कथित नेता वर्ग हैं, किसी को पता नहीं धर्म क्या है अधर्म क्या है। तो इसलिए इस दशा पर हम, तो इसलिए जो नेतृस्थानीय श्रेष्ठ पुरुष हैं उनको धर्म के सिद्धांत के बारीकी को समझना चाहिए और इसी के अनुसार अपने जीवन चलाना चाहिए, ताकि साधारण लोग उन्हीं को प्रमाण मान करके उसी प्रकार काम करेंगे। और साक्षात जमराज ये कोई साधारण व्यक्ति तो है ही नहीं, जिनके ऊपर भगवान ने अपने धर्म की दायित्व न्यस्त किए हैं, इतने बड़े पदवी दिए हैं, इतने बड़े पोस्ट पोजीशन दिए उनको, इतने पावर कि उन्हें भूत भविष्य के जान सकते हैं, परमात्मा की तरह हृदय के अंतर की बात को जान सकते हैं, इतने बड़े उनको पावर दिए हैं। तो उन्होंने अगर इस प्रकार करेंगे ये दंड के तो पात्र होंगे, आप भी दंड भोगेंगे, आपके मास्टर को भी, नेता को भी, उनको भी दंड मिलेगा, क्योंकि ये तो बहुत अन्याय है। अहो अन्यायम अहो कष्टम, ये कैसे अन्याय हो रहा है? जो रक्षक है वो भक्षक बनने लगे, लोग किसके शरण में जाएं? अरे जिनके ऊपर विष्णु दूत ने कहते हैं, देखो साधारण व्यक्ति, पशु पक्षी भी आपने मालिक के भरोसे में पूरे अपने दायित्व तो छोड़ देता है और ये मानता है वो मेरा मालिक, मेरा संरक्षण करेगा। हम देखते हैं समाज में कई कई लोग वो बकरी पालते हैं, भेड़ पालते हैं, तो जो छोटे बकरी के बच्चे होते, भेड़ के बच्चे होते हैं, तो जो उनके पालने वाला गृहस्थ होता है, गृहस्वामी, उनको इतने मानते हैं, वो बोलते हैं अपना मालिक कोई वही खिलाता रहता, सब कुछ वही बढ़ाता, सब कुछ करता। लेकिन आपको पता होगा वो पालते हैं, पूछते हैं, खिलते रहते हैं, जैसे थोड़ा मोटा तगड़ा हो जाता है बकरी, उसको काट कर खाते हैं, कहते हैं ना इसी के लिए तो पालते हैं उसको, मारने के लिए बोले और कोई काम तो होगा नहीं उसमें। कितने विश्वासघातकता है। जो बकरी के सावक एक दिन अपने पूर्ण विश्वास के साथ अपने सर उनके गोद में रखकर सो जाता है कि वही मेरा रक्षक है, अब मेरे कोई नहीं, मैं मेरे मालिक के पास हूँ, और वही मालिक उनको अगर पकड़ के हमारे कसाई घर में भेजे, कितनी बड़ी विश्वासघाती होगा। इस प्रकार धर्म के रक्षक के नाम से, धर्मराज के नाम से जिनको रखा गया है, जो धर्म की नीति के अनुसार अधर्म को पाप दंडित करें, इस प्रकार के नीति के हिसाब से जिनको न्यस्त किया गया, वो जब इस प्रकार अधर्म काम करें, अरे ये सरासर अदंड है, ये दंड के भागी बिल्कुल नहीं है, ये तो पुण्यवान है, सारे प्रायश्चित कर चुका है, बिल्कुल दंड के भागी नहीं, लेकिन उनको दंड देने के लिए ले जा रहे हैं, अरेस्ट कर चुके हैं, पुलिस आकर अरेस्ट कर उसे ले जा रहे हैं दंड देने के लिए। कितने अन्याय बात है, बड़ी खेद की बात। ऐसे डांट कर बोल रहे थे जमराज, तो दूत जमराज के पुलिस हक्के बक्के होकर देखती थी क्या बोलते जा रहे हैं। हम ऑर्डर शीट प्रिंट आउट दिखाया, पूरा बायोडाटा निकाल कर दिखाया, क्या क्या, फिर भी नहीं मानते, नहीं हमारे ऊपर ऐसे दोष देते जा रहे हैं। आश्चर्यचकित होकर सुन रहे थे, देख रहे थे उनको, कैसे बोल रहे हैं, क्या आधार है उसका, बोल नहीं रहे थे लेकिन आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे विष्णु दूतों की ओर। अब विष्णु दूतों तो श्रेष्ठ थे, उनको जमदूतों को डर तो था नहीं, दे आर सुपरियर पावर, वो तो जमराज को दंडित करने की शक्ति धारण करते हैं, वो विष्णु दूत क्यों डरेंगे। वो निडर होकर के बोले, छोड़ो उसको, पहले खोलो रस्सी उसका, रिलीज करो उसको। वो डर के मारे रिलीज करके खड़े हो गए, हमसे छुड़ा भी दिए, रोक के भी और छोड़ दिए, बंधन हम बांधे थे उसको खोल भी दिए। तब बोलने लगे, अरे मूर्खो, आपको पता नहीं इसी जन्म के प्रायश्चित के बाद क्या कर रहे हैं, वो तो करोड़ों जन्म के पाप का प्रायश्चित कर चुका है, है? हम तो इसी जन्म के सर्टिफिकेट लेकर आए थे, पूरा बायोडाटा, आप करोड़ जन्म के बाद, अरे करोड़ जन्म कर चुके हैं, कैसे? बोले आज उन्होंने विवश होकर के नारायण के नाम पुकारा था, इस बात को छोड़ो, जिस दिन उन्होंने अपने छोटे संतान का, दसवां संतान का नाम नारायण रखने का विचार किया अपने बीवी के साथ कि देवी इस बेटा का नाम तो साधुओं ने बता गए, पहले से एडवांस बोल चुके नारायण रखेंगे, अब पहले बाकी लड़कों का पता नहीं क्या चिंकू मिंकू टिंकू क्या रखा होगा, जो भी आजकल जैसे रखते सो मडन नाम, तो लेकिन इस पुराण में एक कथन आता है कि अजामिल जब पतित होने लगा, अपने पत्नी, अपने माँ पिता, संपत्ति, सब घर द्वार पर छोड़ छोड़ते, उनको घर से निकल गया, उन्होंने माँ बाप से झगड़ा हुआ, वृद्ध माँ पिता, एक ही बेटा था, उनके माँ बाप का, इसी दशा में विवाहित था। उनके पत्नी वाली कुलवती और बड़े सती साध्वी थी, उनको भी छोड़ करके इस मद्यपायिनी इस शराबी वेश्या के साथ में चले गए जंगल में जा करके। वो कोल भील जहाँ जंगली वेश्या जहाँ रहती वहीं जा कर रहे वेश्यापड़ा में उनके यहाँ रहने लगे। दुनिया में प्रसिद्ध था, इतने बड़े कुलीन ब्राह्मण आकर के वेश्या के संग करके उनके साथ रहने लगा, वहीं से संतान उत्पन्न करने लगा। कहते हैं कि एक दिन अभी उनके बहुत वर्ष बीत चुका था, अभी जो उनके नौ पुत्र हो चुके थे, कितने साल बिता चुका था, कितने पाप कर चुका था। एक बार कुछ संतों ने इस गंगा जमुना स्नान करके इस रास्ता पर निकल रहे थे, वो जो वेश्यापड़ा में जो कोल भील जंगली एरिया में जहाँ रहता था, तो वहीं शाम हो चुका था। तो संतों ने कहीं विश्राम ढूंढने चाहते थे, कहीं रात विश्राम करें, कहीं कुछ मिल जाए प्रसाद तो ठीक है, नहीं तो कम से कम विश्राम तो करें, क्योंकि तभी जमाने में तो गाड़ी घोड़ा ट्रेन आदि से व्यवस्था था नहीं, पैदल में जाया करते थे। तो जब वहाँ पहुँचे थे तो वहाँ पूछताछ किए, तो वहाँ सब तो कोई भी लोग थे, बोले भाई कोई है, हम संतगण हैं, थोड़ा विश्राम करना चाहते हैं, अगर प्रसाद की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा, नहीं तो हम जलाहार फलाहार जो भी है चले गए, लेकिन थोड़ा रात्रि विश्राम करना चाहते हैं कोई। तो उन लोगों ने बोले भाई हम लोग तो सब शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब वाले हैं, यहाँ से तो एक ही पंडित हैं, लेकिन उनके दशा खराब, लेकिन जो भी हो ब्राह्मण तो है वही, हमारे बस्ती में ये शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब एरिया में यहाँ तो इस प्रकार के लोग रहते हैं, थर्ड क्लास फोर्थ क्लास, लेकिन इसमें एक ब्राह्मण कॉलोनी से एक व्यक्ति आकर यहाँ भी रहने लगा, वो हो गया बहुत दिन यहाँ के प्रेसिडेंट हो गया, अब जाओ देखो सर वो कुछ कर सकते हो, किसके घर बता दिया एड्रेस बता दिया अजामिल का, क्यों अजामिल तो थे ही ब्राह्मण भाई, जब जवानी था वो तो ब्राह्मण था, बड़े कुलीन जुग्य ब्राह्मण था, शास्त्र क्या था सदाचारी था। अब उन्होंने आकर के इस दशा में इतने पतित हो चुका है, लेकिन लोग तो मानते हैं पतित तो उनका होना नॉर्मल बात था, इस प्रकार वेश्यापड़ा में वेश्यापड़ा में लोग तो सभी ऐसे ही हैं, फोर्थ फिफ्थ क्लास के स्टैंडर्ड है उनका। तो देखिए कि वो तो यहाँ से आया है, तो अच्छा उनके यहाँ चले जाओ, तो उनका यहाँ गए। अजामिल तभी तक कहीं डाका डालने किसको लूटपाट करने गया था, भी लेट नाइट तक घर में नहीं आया था, और जा करके संतगण उनको क्या पता, संतगण को तो इतनी पहचान रहता है कि कोई साधु का घर और असाधु का घर कैसा है, क्योंकि साधु के घर के सामने तुलसी जी पौधा रहते हैं, गोवंश रहते हैं, ऐसे शुद्धता रहता है पता चलता। वहाँ कुछ ऐसे देखे नहीं उन्होंने, ऐसे कुछ नहीं था, तो कुलटा थी उनके घर में क्या हो, तो लेकिन फिर भी सारे गांव के लोग इशारा किए उन्हीं का नाम, बोले रात में कहाँ जाए, तो जा करके पुकारे उनको, तो कुलटा वेश्या ने वो बाहर आई, आकर के देखा है तो जटा जुटधरी तो संत है साधुगण है, उनको लगा कि पागल हो किसी गलती से इधर आ गए क्या, उनको पता नहीं एड्रेस गलती हो गया उनका, तो उनको देख रहा था आप कैसे इधर आ गए, वो बोलते कि माताजी अब अंधकार हो चुका है, रात्रि हो रहा है, हमको बस विश्राम करना है, अगर प्रसाद व्यवस्था नहीं कर पाएंगे घर में आपके पतिदेव है, हम गांव से पता करके आए कि आपके ब्राह्मण परिवार है, आपके पति कुलीन ब्राह्मण है, हम वही आश्रय मिलेगा इसी आशा से हम आए हैं। तो उनका बात सुन करके अब उस वेश्या को लगा कि बोल रहे रात तो सही बात हो गया, लेकिन वो मुझे नहीं जानते हैं, मेरा स्वरूप पता चलेगा भाग जाएंगे यहाँ से बेचारे को पता नहीं है। तो बोले ठीक है आप चाहते हैं तो बार न में सो सकते हैं, अब हमारे पतिदेव आने वाले हैं, ना कोई भोजन पानी के प्रसाद की व्यवस्था हो जाए। तो ब्रुसली ने बोली कि आप ये आशा मत कीजिए, क्योंकि अगर मैं दूंगा आप खाए भी खाएंगे भी नहीं, वो समझ नहीं पाए क्या बात है। तो उन्होंने बात है कि क्या बात है, हम तो भरोसा करके आए आपके पास, आप कुछ अगर देंगे भोजन की व्यवस्था करेंगे, हम तो चाहते थे उसको पाएंगे विश्राम करेंगे। बोले नहीं ऐसा नहीं, तो अपना वेश्या तो थी सच बता दी कि ऐसे ऐसे है, गाँव लोग बता दिए, लेकिन मैं इस प्रकार के हूँ, ये मेरा परिचय है, इस प्रकार के हमारे मध्य मनस एवं जो उनके सारे बता दिया से इस प्रकार के। अब तो यहाँ प्रसाद के नाम नहीं है यहाँ पे। इस पर ओ साधु ने बोले राम राम राम, कहाँ पहुंच गए भाई, अब क्या करे, आश्रय ते ही लोग, रात हो चुका, अब तो कहीं जा नहीं सकते, ऐसे सो गए। लेकिन मन में विचार किए, बाद में उनका पति भाई उनको बताया कि ऐसे ऐसा है, साधु ने सुला दिया, खाने के लिए मांग रहे थे, बताया आपके नाम किसी ने बता दिया, आपके पहले के रिकॉर्ड कोई बता दिया, वो आ गए उसको देख कर, लेकिन अभी रिसेंट रिकॉर्ड उनको पता नहीं आपका। तो अजामल ने बोला सही बात, प्रसाद तो था तो मैं ईसा, लेकिन अभी स्थिर दशा में हूँ, संतगण आ गए लेकिन भोजन तो नहीं किए। तो संतगण ने रात में विश्राम करके सोचते, देखो हम आकर के इसे, ये सचमुच उन्होंने जो उस वेश्या ने बताई कि सचमुच ये ब्राह्मण का ऐसे दुर्गति हो चुका है, ऐसे महापापी बन चुका है, उसका कैसे उद्धार। देखिए संत लोग जो होते हैं ना, हमेशा दूसरे का भलाई सोचते हैं, भले कितने भी कोई कंडम क्यों ना हो, छोटा सा उपकार किया, रास्ता में अपने घर के बारंडा में सोया, कुछ कुछ नहीं दिया उनको, तो बेचारे आपने ऐसे भी सो, लेकिन फिर भी उन्हें सोचते हैं उसका कैसे उद्धार हो सकता है। बोले अगर हम उनको बताएं कुछ साधन भजन करो, नाम जप करो, पकड़ो, तो करेगा नहीं, ऐसे महापापी वो करेगा भी नहीं, उल्टी कुछ बोलेगा, तो कैसे उनको भलाई हो सकता है। वो रात भर विचार विमर्श अपने में कर रहे थे। तो लेकिन जब वो वेश्या से बातचीत कर रहे थे, मार किए थे कि वो गर्भवती है, तो रात भर विचार विमर्श कर, बोले देखो तो कुछ करने वाला है ही नहीं, साधन भजन तो कुछ करेगा ही नहीं, और कोई सुधार तो करेगा ही नहीं, तो किस प्रकार उनका भलाई होगा। तो सोच विचार कर बोले देखो हम कल जाते समय में या तो मिलेगा विदा लेने के लिए, तो ऐसे एक काम करके जाएंगे ताकि उनका कल्याण हो। तो संतों ने सुबह जब विदा ले रहे थे, सुबह हो गया, बोले हम जा रहे हैं, दूसरे कहीं नहाएंगे देखेंगे, अब तो बस आपने आश्रय दिया बरंडा में घर के बाहर, तो उठे अच्छा है। तो उनको धन्यवाद हो जो पति पत्नी आज, तो बोले कि देखो लगता है कि आप गर्भवती है, अब अभी कुछ दिनों में आपके संतान होंगे, तो अभी आपके जितने संतान हुए तो जैसे कि, लेकिन ये संतान हम एडवांस बता के जाते हैं, ये जो आपके संतान होगा उसका तो नाम नारायण रखना, नारायण ये नाम रखना, एडवांस बुकिंग कर दिए नाम का, अभी पता नहीं था बेटा होगी कि बेटी होगा, जो होगा लेकिन बेटा का नाम रख लिए, संतगण तो होते हैं उनके। तो सुन करके वो शायद बोला अच्छा इस बार तो संतों ने नाम रख लिए है ना, कुछ नहीं। तो सचमुच कुछ दिन के बाद उनका पुत्र हुआ। तो इस बार उन्होंने पहले से बात कर रहे थे आपस में पति पत्नी, ये साधु संत ने कह गए इस बार अगर बेटा होगा तो उसका नाम नारायण रखेंगे, आपस में बातचीत कर रहे थे। और बेटा जब हुआ उसका नामकरण भी किए कि पहले से व्यवस्था था उनका नारायण रखे। और छोटा बेटा सबसे था, और वो बूढ़े बूढ़ी हो चुके थे, आसक्ति छोटे बेटे पर होता ना ज़्यादा, आप लोग को तो सब पता ही है छोटे बच्चे पर ज़्यादा आसक्ति होता है, तो आ सकते हो तो उसके नाम को ज्यादा पुकारता है, बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण इधर खाओ, खाते समय में, बैठते समय में, पीते समय में, कुछ का नारायण बेटा आओ मेरे साथ बैठो, मेरे साथ खाओ, मेरे साथ पियो, मेरे साथ, उनको बुलाते। जिस दिन से नारायण नाम रखने का विचार किए तब नारायण नाम उच्चारण शुरू हो गया, और उसके बाद कई बार भोजन में, खाने में, सहन में, चलने में, उठने में, हकलने में कई बार बुलाता उसको, नाम लेकर पुकारा उसको नारायण करके। लेकिन उनको ये नहीं पता था ये नारायण नाम का महिमा क्या है, ये तो नहीं पता था, खुद तो पाप करता ही था, लेकिन इसलिए पाप से निस्तार पाने के लिए नाम वो भी नहीं लेता था कि ये इसलिए कि बड़े पावरफुल नाम है इसके लिए, ये तो अपने बेटा के आसक्ति के कारण बेटा को बुलाता था, उसका नाम नारायण रखता था। तो इस बेटा के नाते उनको पुकारने के बुलाने के नाते अनजान में भगवत नाम अनेक बार उच्चारण किया, प्रतिदिन कई बार उच्चारण किया। तो इसलिए विष्णु दूत कहते हैं कि अरे जमदूतों तुम आपको पता नहीं है, उन्होंने ये जो चार अक्षर नारायण वो तो कितनी बार ले चुका है, वो आज लिया ऐसा नहीं है, आपने बेटा को जिस दिन नामकरण किया उसी दिन से कितने बार पुकारा होगा, कितने बार लिया है। और शास्त्रों के सिद्धांत है, नाम महत्व में बताया गया कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अगर एक बार भगवान का नाम उच्चारण कर ले तो उनके पूरे जीवन भर तक पूरे कस करके पाप करे इतने पाप नहीं कर सकता जितना एक पाप की शक्ति उसको निराकरण कर दे। एक भगवत नाम में इतने शक्ति है पाप नाश करने में कि पूरे जीवन भर लगातार पाप करे इतना कर नहीं पाएगा। तो कई बार लिया, लेकिन होना चाहिए निरपराध, अपराध मुक्त नाम होना चाहिए, तब उनका प्रभाव होगा। बोले वो अपराधी निरपराध नाम लिया था। बोले क्यों? बोले उनको तो अपराध के बारे में से कोई पता भी नहीं था, नाम में ही पता ही नहीं था। बाकी नाम अपराध एक होता है, यदि पाप बहुत कर रहा था। देखिए पाप और अपराध में ही भिन्नता है। पाप जो है उसका रिलेशन शरीर के साथ है, पाप शरीर के साथ संपर्क है, उसका परिणाम भी शरीर को मिलता है। शरीर में दुख भोग होता है, वैसे शारीरिक दुख भोगना पड़ता है। लेकिन अपराध शरीर के साथ नाता नहीं, उसका तो सीधा आत्मा के साथ नाता है। अपराध करने से आत्मा के प्रगति बाधित हो जाएगा, पाप करने से शरीर की प्रगति बाधित हो जाएगा, ये अंतर है। तो और पाप इतने कितने भी पाप एक हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा नाम से, इससे पाप नाश हो सकता, लेकिन अपराध नाश नहीं होता, हो तो बड़े खतरनाक। तो इन्होंने अपराध नहीं किया, क्योंकि नाम के अपराध में कहा जाता है कि कोई साधु, आप लोग 110 नाम अपराध जानते होंगे, इसमें से एक बाकी तो साधु संत के साथ रहता नहीं था इसलिए कोई चांस था नहीं, और दूसरा था कि कर्म कांड कुछ करता तो कुछ था नहीं, कोई दूसरे अपराध करने का तो चांस था नहीं उसका, एक ही अपराध का चांस था उसका, क्या? नाम बलात् पाप बुद्धि, नाम के बल पर पाप करना, ये एक नाम अपराध है कि मैं पाप कर रहा हूं, कोई ना बात नहीं, दो राउंड और एक्स्ट्रा चैंटिंग कर दूंगा पूरा हो जाएगा, ये जो भावना बहुत खतरनाक है। अच्छा ये हो गया, तू पाप कर लिया, एक माला एक्स्ट्रा कर लूंगा आज, आपको पता नहीं, आप तो सोचते एक माला एक्स्ट्रा कर लेगा, महाघातक पाप है ये, पाप अजर अमर हो जाएगा। अगर श्री नाम को पाप करने के लिए यूज करेंगे, पाप करके मैं नाम करके काट दूंगा, फिर नाम को फिर पाप करूंगा फ्रेश, ये महाघातक अजर अमर अपराध है, कभी नहीं मिटेगा पाप ऐसे। और वो ऐसा नहीं करता था नाम के बल पर प्रायश्चित करने के लिए, नाम करके मैं पाप को मिटा दूंगा कि नाम करूंगा मैं पाप मिट गया, ऐसा कोई तो उनका बुद्धि विचार भी था नहीं, क्योंकि वो तो पाप मिटने के लिए नाम थोड़ी कर रहा था ना, और पाप नहीं करूंगा ऐसा सोचकर कर रहा था, अब जो हो गया नाम करके मिटा दूंगा, ऐसे भी नहीं, वो तो अपने बेटा को पुकार रहा था बस। इसलिए ये नाम वाला जैसे पाप बुद्धि वो भी नहीं लागू था उसको, कि नाम के बल पर पाप से बचूंगा ये भावना भी उसका था नहीं, लेकिन नाम करता था पाप मिट जाता था, लेकिन फिर पाप करता था, फिर नाम लेता था फिर पाप करता था। तो इस प्रकार उन्होंने कितने कितने जन्मों के पाप को प्रायश्चित कर चुका है, लेकिन फिर भी पाप करता था ये निश्चित बात है। लेकिन अभी जो नाम लिया उन्होंने म्रियमाण अवस्था में लिया, म्रियमाण अवस्था मतलब अभी मरने की नौबत था, और जमदूत तो बांध लिए थे, वो खींच के ले रहे, मरी था मर गया था मानो, तो जब पुलिस जमराज के पुलिस आकर पकड़ करके बांध करके ले रहे थे तब तो मर चुका था मानो, और क्या है, मर चुका था, जमदूत बांध कर ले रहे थे रास्ता में, तो बचा रोका दिया गया। बोलते हैं कि अभी इस नियमान अवस्था में उनका शरीर में कोई ताकत नहीं था, कोई चांस नहीं था, दूसरा कुछ पाप करे ना पुण्य कृत करने का था नहीं, मरने का नौबत था। इस अवस्था में विवश होकर के अति उच्च स्वर में नारायण नाम पुकारा, तो अभी भगवान इस डोज को संभाल नहीं पाए, भगवान तुरंत सोचे कि तो मेरा ही हो गया। भगवान ऐसे आत्मवत मान करके अपना आदमी को भेज दिया, बोले जाओ देखो उनको ये क्या हो रहा है, मेरा नाम लिया और उनको साथ अन्याय हो रहा है। तो भगवान आपने आदमी भेज दिए। भगवान राम ने प्रतिज्ञा करके बोले थे, रामायण प्रसंग आता है, जब विभीषण शरणागति लेता है, विभीषण जब शरण लेने के लिए आया, अब जानते हैं वो रावण को खूब समझाया था लेकिन रावण तो नहीं सुन रहा था। अंत में वो अपना काम करता था, अंत में इंद्रजीत खूब गाली गुलस दे करके, जैसे दुर्योधन ने विदुर जी को अब उनके सभा में बहुत अपमानित किया था, विदुर जी छोड़ के चले गए, तो इस प्रकार इंद्रजीत ने खूब फटकार करके बोला, बोला पिताजी ये चाचा जी क्या बोल रहे हैं, उनके असुरों के बल के ऊपर भरोसा नहीं है, ऐसे करके खूब फटकारा। तो वो तो कुंभकर्ण तो ना विभीषण तो रावण का भाई थे, उनके चाचा है, वो भी मंत्री थे, उन्होंने बोले अरे तू मूर्ख तू क्या जानता है। उसको सुन करके रावण भी गुस्से हो गए, वो किक मारा उनको, पदाघात किया, अरे तो दुर्बल निकल जाओ यहां से, घर से राज्य से निकाल दिया उनको। तो उनसे विताड़ित होकर विभीषण चले गए। अब क्या करेंगे, उनके भाई थे कुबेर, उनके पास चले गए, ऐसे कहते हैं कुबेर के पास जाकर बोलते भैया भाई साहब हम निकाल दिया, बोले मुझे भी तो पुलिस निकाल दिया था, तुझे अभी निकाल दिया, मैं अभी क्या करूं। तो कुबेर के मित्र भगवान शंकर यहाँ बैठे थे, भगवान शंकर कुबेर के यहाँ थे उस दिन। तो जाकर जब शंकर जी बोले अरे डरते क्या है, किसके लिए तुझे निकाला ना, मैं राम के सपड़ा द्वारा, तुम इनके पास जाओ ना, जिनके लिए तुझे निकाला गया उनके पास जाओ ना, वो तो हमारे शत्रु है, हमारे से लड़ाई करने के लिए उनका प्लान चल रहा है, अभी बन रहा है उनका प्रॉब्लम, तो मुझे स्वीकार करेंगे, हम तो शत्रु के भाई हूँ, मेरे गाड़ी में नंबर प्लेट लंका का लगा हुआ है, मुझे स्वीकार करेंगे। बोले अरे इस बात को सोचना है, आप जाओ कोई सोचो मत, चाहे कैसे भी शत्रु हो मित्र हो, कैसे पापी हो, कितने भी कितने कृतज्ञ क्यों ना हो, जो उन प्रभु के सम्मुख हो जाता है जन्म कोटि पाप तुरंत नाश हो जाता है उनका, तो उनका पास जाओ, डरता क्यों है, मैं बताता हूँ जाओ। अरे जरूर स्वीकारेंगे, तू जाओ तो सही। तो भगवान शंकर के बात पर भरोसा करके विभीषण ने बोले मेरे साथ वो चार लोग, बोले जाओ ना पूरे। तो अपने गाड़ी लेकर के सीधा गए, अपना गाड़ी था, अपने चार असिस्टेंट के साथ विभीषण गए। अब जब जा करके वहां लैंडिंग करने वाले ही थे, वहां जो बीएसएफ थे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स थे, भगवान राम के वो तो रामेश्वर प्रसिद्ध वन पर थे बॉर्डर, वो देखे वो लंका के नंबर प्लेट है, वो समझ लेते तो हमारे शत्रु पक्ष के, यहाँ के तो है ही नहीं गाड़ी, तो सब गन पॉइंट पर लाए गए, उड़ा दें उसको। लेकिन शंकर जी ने बोले थे कि तू देखो जाओ तो सही, लेकिन हमेशा अविरत राम नाम उच्चारण करते जाओ, नाम उच्चारण करते रहो। ओ राम 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 करता था, वो गन पॉइंट पर ला करके सुने राम राम, बोले अरे भगवान तो हमको पहले से सतर्क किए, कोई अगर मेरा नाम लेते उसको कोई बिगाड़ना नहीं, चुपचाप मेरे पास लेकर के आना। बोले वो तो नाम उच्चारण कर रहा है, तो लंका का आदमी बिल्कुल, नंबर प्लेट गाड़ी तो वहीं का है, अब राम नाम कर रहा है। तब लैंडिंग कराए, उसको कुछ मार नहीं पाए, तो अपने हायर ऑफिसर से कंसल्ट किए, अंगद थे और सुग्रीव थे, जम्बवान थे, हनुमान थोड़ा दूर में हो गए उनके पास, तो बाकी उनसे कंसल्ट किए, ये सब सुपर पावर थे। वो लोग बोले भाई देखो ये तो गड़बड़ मामला, ये तो पूरा बोले पूरे यूनिफॉर्म ही है शत्रु का, गाड़ी भी वहीं का है और वेशभूषा सब वहीं है, किसी ने पता लगा लिया, बोले ये तो रावण का भाई है। अरे राम, पहले एक दो बार ऐसे घिस्सा हुआ है कि रावण के गुप्तचर छिप करके आए थे, पकड़ा गए थे, पिटाई खाए थे, बोले ये किसी गुप्तचर के नाम तो नहीं आया क्या, बोले मायावी होते हैं असुर, कोई रूप बदल करके आया क्या। सभी ने बोले कि नहीं तो मार देना चाहिए, दंडित करना चाहिए, लेकिन गड़बड़ते ही कि नाम उच्चारण कर रहा है, भगवान ने मना किए। तो भारी मीटिंग हुआ उन लोगों का। उन्होंने डिसाइड किया, देखो मार तो नहीं सकते हैं, भगवान मना किए, लेकिन लेकर चलते हैं। भगवान बोले मिलाएंगे, लेकिन नजरबंदी में रखते हैं। कल बोला नजरबंदी होता है, उसको नजर में रख करके लिया गया, भगवान राम के पास लिया गया। भगवान राम के साथ मिलने से पहले, उनको मिलाए नहीं पहले, मीटिंग भगवान राम को बोले ऐसे ऐसे असुरों का एक आया है, असुर जैसे अड़ी चार लोग उनके साथ में मिलना चाहते हैं, लेकिन हम आपसे पहले, भगवान बोले मीटिंग करो। तो सारे कैबिनेट मिनिस्टर बैठे भगवान राम के साथ, मीटिंग चला भारी। भगवान बोले ठीक है, आप लोग का मतामत बताओ। सभी अपने मतामत बताए शास्त्रोक्त रीति में कि निश्चित रूप से वो असुर का है, असुर का विश्वास कभी नहीं किया जा सकता, भले कुछ भी हो उनको दंडित करना चाहिए। आप अगर चाहते हैं नाम उच्चारण करता तो उनको रखा जाए और उनका परीक्षा निरीक्षा करके बाद में अगर कोई गड़बड़ लगा तो मार दिया जाए, नहीं तो नहीं उनको नजर में रखा जाए, अभी उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये नीति से बाहर बात है। अंगद है, सुग्रीव है, जम्मवान है, सब अपने नीतिपूर्ण बात में सब यही निष्कर्ष दिए कि नहीं उनको तो ऐसे बिना जाने कुलशील अज्ञात कुछ नहीं इसे विश्वास कर लेना ठीक नहीं है। तो लास्ट में हनुमान मिनिस्ट्री रैंक में थे, उनको भी पूछा गया। हनुमान जी बोले देखो मैं उनको पहले मिला था, ये तो लंके वाले संत हैं, उन्होंने मुझे मदद भी किए थे, वो मुझे तो लगता है कोई अच्छा व्यक्ति है, इसे नहीं है, उनको तो स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन बाकी कोई नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर भी हनुमान जी बोले मैं तो आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप मुझे बोलते हैं कि आप जैसे डिसाइड करें। भगवान राम तो बोले अच्छा सभी ने मंतव्य दिए, सभी मानते हैं कि मेरा ना, ना प्रभु आप, आपके मंतव्य सर्वोपरि है, लेकिन हम आपके विश्वस्त मंत्रीगण हैं, हमारा सुझाव आपने पूछे हम बताए तो जरूर आप उसको सोच विचार करके डिसीजन लेंगे। तो हनुमान बोले ठीक है मैं सबका विचार सुन लिया, अभी मेरे डिसीजन सुन लो। मेरे डिसीजन है कि तुरंत उसको लेकर आओ और मैं कोसी विचार के बिना उसको अभी स्वीकार करूंगा, अभी इसको स्वीकार करूंगा। आप सब चुप हो गए, सब चुप हुए, आपस में बातचीत करने लगे। बोले तो हमको मीटिंग क्यों बुलाए, जो अपना ही करना था भाई, मीटिंग क्यों बुलाए, हम लेकर क्यों आए, अब क्या करें, सब ऐसे करके बैठे नहीं, अब भगवान ऐसे ले तुरंत लेकर, तुरंत लेकर का आए। फर्स्ट टाइम राम ने विभीषण को देखे, विभीषण ने राम को देखा प्रथम बार, पहले फोटो भी नहीं देखे थे, तब तो कैमरा था ना। पहली बार जब भेंट हुआ, अब पहचानने में उनको कोई गलती नहीं हुआ, अरे प्रभु को पहचाने के जो उनका जो विशद विवरण उन्होंने सुने थे, जाने थे, पूजा करते थे, उनके दिव्य कांति दिव्य रूप को देख करके विभीषण तुरंत पाही माम श्री राम चरणे शरणांग, अब भगवान के चरण में गिर पड़े, पाही माम रखा करो कह करके गिर पड़े। भगवान अपने आसन से तुरंत उठ गए, उठ करके जा करके अपने बाहों से उनको उठा करके आलिंगन किए, घंटों तक आपने आलिंगन मुद्रा में रखे। विभीषण उसके बाद में संयम आकर बोले कि मैं इसे रावण को अपना इंट्रोडक्शन दिए। भगवान और इंट्रोडक्शन सुनने बाद है बोले बहुत हो गया, इतना जरूरत नहीं, इतना तेरे बारे में सुनना नहीं चाहता हूँ, ना मैं बताना चाहता हूँ, मैं वैसे हूँ प्रणाम, नहीं कोई जरूरत नहीं तेरा इंट्रोडक्शन, मुझे जरूरत नहीं, मेरे इंट्रोडक्शन सुन लो। तू मुझे आकर के मेरे शरण में गया, इतनी बड़ी काम किया, मैं तो अभी वनवासी हूं, क्या दूं तुझे, इतने बड़े मित्रता तुमने मेरा किया, मैं तुझे क्या दूं, लेकिन फिर भी मैं इतने कृतज्ञ नहीं हो सकता, कुछ तो दूंगा तुझे, ये मेरे समस्त मंत्रिमंडल है, सभी के सामने मैं आपको इसी क्षण लंका के राजा के रूप में घोषणा करता हूं। ओ पगड़ी बांधे उसके उसी की सभा, अरे जो मिनिस्टर तो हक्का बक्का हो ले रही तू, ये वो कमाल कर दिए, उसको राजा बना दिए, डिक्लार के बोले हम लंकेश विभीषण लंका राजन जय जयकार। अब प्रभु ने जब कर लिए चुपचाप सब किए, लेकिन एक हाथ उठाया बोला सर ऑब्जेक्शन, क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, ना सर बुरा ना माने मेरा बस, ना बोलो ना, हम तो ही जानते हैं किसी को अपॉइंटमेंट करना होता तो पोस्ट वैकेंसी हो तभी अपॉइंटमेंट होता है ना, पोस्ट खाली हो किसको अपॉइंटमेंट हो, लेकिन ये आप लंका के राजा पोस्ट में अपॉइंटमेंट कर दिए, लेकिन पोस्ट तो ऑक्युपाइड है, वैकेंसी तो है ही नहीं। अब रावण महाराज अभी तो महाराज बने हुए हैं, वो जीवित हैं, पोस्ट पर हैं, ना वो मरे ना वो त्याग पत्र दिए ना छोड़े, कुछ तो गए नहीं, आप कैसे अपॉइंटमेंट कर दिया उसके जो पोस्ट वैकेंसी नहीं है। तो भगवान राम इस प्रश्न सुनकर हंसने लगे, बोले अच्छा ये प्रश्न है ना, बाकायदे आप सभी का प्रश्न ही होगा ना भाई, पोस्ट खाली नहीं, अपॉइंटमेंट कर दिए कहाँ जाएगा। भगवान राम बोले मैं मानता हूँ अभी पोस्ट खाली नहीं है, लेकिन मैं खाली कर दूंगा, खाली करके उनको बैठाऊंगा। अब जब बोल ही दिया, घोषणा कर दिया, राजा तो राजा करूंगा, पोस्ट वैकेंसी करके करूंगा। वैकेंसी कैसे करेंगे ना, उसको मारूंगा, उसको बद्ध करूंगा, करके उनको विष्णु को राजा बनाऊंगा, जब मैं कर दिया तो करूंगा। तो दूसरे मंत्री ने हाथ उठले, सार और एक संदेह है क्या, ना प्रभु बुरा ना माने, रावण इतने चतुर है कि ऐसा मत समझिए कि उन्होंने उनका जासूस अभी भी कहीं सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, सब पता लगाता होगा, बहुत माया भी पावरफुल है ना। तो फिर डर क्या है ना, डर ये है, शंका हमारा ये है, रावण को पता चल भी गया होगा कि भैया एक बार दंडवत प्रणाम में राजा का पोस्ट, एक दंडवत प्रणाम में किंग, बिना इलेक्शन में बिना कोई काम एक दंडवत मारो तो किंग बन जाओ, राजा बना देते हैं एक दंडवत। तो अगर काल सुबह वो चार्टर्ड फ्लाइट डायरेक्ट बुकिंग किया होगा लंका से और यहाँ लैंडिंग करेगा, वो आकर के एक दंडवत मार देगा, आप तो कुछ पूछते नहीं, कुछ नहीं करते, विचार भी नहीं करते भाई क्या उनके मन में विचार है, क्या क्या उनके अंदर क्या है, आप कुछ देखते विचारते नहीं, सीधा उनको पोस्ट दे देते। अगर वो आकर के इसे एक दंडवत मार दे तो उनको मार पाएंगे ना, राजा से पोस्ट निकाल पाएंगे, फिर क्या करेंगे, कैसे उनको राजा पोस्ट करेंगे। भगवान हंसने लगे सुन करके, बोले आपकी शंका है, अवश्य शंका होना चाहिए कि रावण अगर ऐसा करे तो फिर क्या करें, आप बोलते रावण को मारेंगे उनको राजा करेंगे, वो एडवांस राजा बना ही दिए। बोले नहीं मैं तब भी राजा बनाऊंगा भीष्म। बोले कैसे, वो आकर दंडवत करेगा तो, बोले दंडवत करेगा तो रावण को बोलूंगा तू मेरा मित्र हो गया, अभी तू लंका के पोस्ट छोड़ दो, उसको मैंने एडवांस बुकिंग कर चुका हूँ, उसको राजा बना दो, तुझे राजा उनको भी राजा बनाऊंगा, उनको कौन सा राजा बनाएंगे फिर कहाँ का। बोले अभी 14 साल तो पूरा होने वाला है, अयोध्या मुझे मिलने वाला है, अयोध्या का राजा उसको बना दूंगा, उसमें क्या, राजा तो उसको ही बना, एक बार कोई दंडवत प्रणाम कर दे उनको तो राजा बनाकर ही रहूंगा मैं। भगवान जो इस प्रकार करने लगे तो मंत्रिमंडल से बोले प्रभु ये क्या, हम तो हमारा कोई विचार कोई मूल्य नहीं कुछ नहीं, आप तो ऐसे कर रहे हैं सब मनमानी। तो भगवान बोले देखो मेरा तो निर्णय है, अब मैं निर्णय लिया तो कर भी चुका हूं, कर दिया हूं। बोले आप अगर ऐसा ही करेंगे तो हमको आपके सेवा में लगा रखें, हम कितने बड़े बड़े पहाड़ पत्थर टन टन ला करके समुद्र में सेतु बना रहे, काम में लगा रहे, आप तो आकर रावण के बेकार हो जाएगा सब, किस मतलब का काम लगा रखे। तो भगवान ने तभी बोले थे, बोले ये मत समझो कि आप लोग मुझे मदद कर रहे हैं सीता को प्राप्त करने के लिए, मैं नहीं कर सकता, आप बहुत बड़े मेरा बहुत एहसान कर रहे हैं, मेरे साथ आए, मेरे साथ ला करके डैम प्रोजेक्ट लिए, अपने ब्रिज बना रहे हैं, ऐसा करेंगे, ऐसा दृष्टता मत सोचो, किसी का भी सहायता नहीं चाहिए, मैं अकेला इसी क्षण अगर इच्छा करूं रावण सीता को ला करके दंडवत करके छोड़कर चला जाएगा, अगर मैं चाहूं तो। सब बढ़ के बोले तो फिर इतना काहे कर रहे हैं, जब ये कर सकते हैं सब, व्हाई यू आर डूइंग लाइक दिस ऑल दिस थिंग्स, बंद करो, क्या कैसे कर रहे हैं। तब भगवान राम ने बोले ये सब मैं इसीलिए कर रहा हूं, ये सीता उद्धार के लिए नहीं, ये आप लोग के उद्धार के लिए, क्योंकि आप लोग अगर मेरे लिए कर्म करेंगे तो आपके कल्याण होगा, आप लोग को मेरे काम में लगाने के लिए ही प्रोजेक्ट लिया, नहीं तो इसमें क्या। बाकी रही बात विभीषण के शरणागति के बारे में, आप शंका करते हैं, केवल इसी इंसिडेंट नहीं, मैं आज से सुन लो कान खोल करके मैं घोषणा करता हूं, मेरा जो स्वभाव है आप सुन लो। भगवान कहे, यहाँ बड़े रामायण के बड़े प्रसिद्ध श्लोक माना जाता है उसको, भगवान अपने उद्घोष प्रकाश करके किए, सकृत एव प्रपन्नायम तब अस्मि इति जाचते। सकृत मतलब एक बार भी, कोई आपने पूरे जीवन अवधि में अगर एक बार भी सकृत एव प्रपन्नता मतलब शरणागत हो जाता है, दिल से हृदय से हाथ खोल करके दिल खोल कर बोले हे प्रभु मैं आपका हूं, वन टाइम एक बार ऐसे कोई कह दे, बोले वो तो एक बार कहेगा, किसी भी परिस्थिति में विपद में पड़ करके अगर हाथ खोल कर बोले हे प्रभु हृदय से मैं चाहता हूं मैं आपका हूं प्रभु, ऐसे कोई बोल दे सकृत एव प्रपन्नायम तब अस्मि इति जाचते, मैं आपका हूं ऐसा कोई याचना कर दे न फिर तो मेरे बात सुन लो, वो तो वो कह देगा मैं क्या करूंगा, न अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतं मम, बोले ये मेरा व्रत है मेरा संकल्प है सुन लो, वो तो एक बार के लिए मेरा बोल के कह लेगा, मैं सदा सर्वदा के लिए उनको सारे अभय से बचा दूंगा, उनको कोई भय नहीं रहेगा। ये भगवान के व्रत धारण किया हुआ वाणी है, लेकिन हम इतने नालायक है दिल खोल करके एक बार भी भगवान को हम आप कहें इसे कहते ही नहीं, कहते ही नहीं। आप बोलेंगे हम तो डिबोटी हैं, हम मंदिर में रहते हैं, तीन बार तो ठाकुर जी के पास जाकर दंडवत मारते हैं, कैसे आप कहते हैं, हाँ दंडवत तो करते हैं, आपने पूछो आपने आपको ऑनेस्टली जब प्रणाम करते हैं सचमुच अगर कहना भी पड़े इसे कहते हैं प्रभु मैं आपका हूं, आपका तो हूं उनका भी हूं उनका भी हूं उनका भी हूं, खाली आपका नहीं लेकिन भगवान के कहना, कृष्ण का भी यही बात राम के यही बात, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, केवल मेरा शरण में आओगे फिर डरने का बात नहीं मैं तेरे साथ हूं। लेकिन हम ऐसे अभी तक कह नहीं पाए, लेकिन कोई ऐसा कह दे विभीषण ने छोड़कर आकर के पूर्ण मेरा शरणागति दे, वो तो मेरी ही स्वभाव है सदा के लिए उनको अभय कर दूंगा, और आपको मेरे शक्ति के बारे में पता नहीं मैं बता दिया, आपका किसी का जरूरत नहीं। सब साइलेंट हो गए। तो ये भगवान की संकल्प व्रत है। श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में बंगाल के एक राजा थे, तभी तो नवाब हुसैन शाह हुए, उनके पहले बंगाल के जो हिंदू राजा थे उनका नाम था श्री सुबुद्धि राय। सुबुद्धि राय के पास एक नौकर था, वो मुस्लिम था जिसका नाम था हुसैन शाह था, बड़े विश्वसनीय नौकर था। सुबुद्धि राय उसको पीटते भी थे लेकिन उनको पता नहीं, उनको नौकर रखे थे अपने यहाँ। तो ये बदमाश आपने बड़े विश्वास करके उनकी नौकरी करते करते उनके जान खाया, उनके राज्य ले लिया उन्होंने, उनसे हड़प करके कैसे कैसे चटकारी करके राज्य ले लिया, हटा दिया। तो लेकिन फिर सुबुद्धि राय को मानता था, बोला वो मेरे मास्टर थे, मुझे सिखाए, मुझे सब उनके कृपा से मैं इतने बड़ा हुआ हूँ, लेकिन राजा बन गया, सुबुद्धि राय को निकाल दिया था। तो एक दिन उन्होंने अपने रानी के पास बैठा था हुसैन शाह, तो वो अपने उत्तरी खोल गया तो देखा कि पीठ में एक दाग पड़ा हुआ है। तो बेगम ने पूछा कि ये क्या है आपके पीठ में, ये चिन्ह क्या है, बोले पता नहीं तुझे एक बार मैं कई गलती किया था तो मेरे तत्कालीन मालिक राजा सुबुद्धि राय ने मुझे चाबुक में पीटा था, लेकिन मेरे भलाई के लिए पीटा था, मानता हूँ मैं सुधर गया इसे चाबुक पार खाकर, आज इसीलिए राजा बना हूँ, वो जब मुझे नहीं पीटता मेरे बुद्धि नहीं सुधरता, आज उन्हीं के मार खाकर मैं आज इतने बड़ा हुआ। बोले जो भी आप बड़े हो जो आपको मारा उन्होंने, वो सुबुद्धि राय आपको मारा है, वो तो मानता था मेरे गुरुजी थे मेरे मालिक थे, मैं उनसे सीखा हमारा, मैं नमकहार में किया उनको निकाल दिया मैं राजा बना, लेकिन वो तो लेकिन उनका पत्नी ने नहीं नहीं ऐसा नहीं, तो क्या करूँ ना उनको, तो आप एक्शन लीजिए ना, मैं उनको एक्शन नहीं ले सकता हूँ, जिंदगी भर उनका नौकरी किया उनके दाना खाया उनके जो भी किया किया अभी तक, उनको तो मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता हूँ ना। वो जिद करके बैठा, बोला कुछ तो करो क्या करो, बाध्य में डिसाइड हुआ कल कलमा कर दो। कलमा करना एक होता है मुस्लिम लोग मुंह में पानी लेकर के फेंक देंगे तो आपके धर्मनाश हो जाएगा, और उन्होंने पानी लेकर फेंक दिए तो सुबुद्धि राय क्योंकि राज परिवार के थे खानदान राजा का, उनके सारे हिंदू शासन बोले कि नहीं आप इधर में हो गए मुसलमान हो गए, जब अरे मरी मैं पता नहीं था, गलती से उन्होंने फेंक दिया पानी, मैं क्या करूं, नहीं माने नहीं कोई, पूरे बंगाल में कोई हिंदू उनको ग्रहण नहीं, बोले नहीं तो विधर्म हो गया, तू आ गया मुस्लिम जाओ, अब क्या करें, घर परिवार उनको स्वीकार ना करें उनको। तो बड़े दुखी होकर के उन्होंने काशी आए, काशी पंडितों की सभा के स्थान है विश्वनाथ के दरबार में, वहाँ आए, आकर के बड़े बड़े पंडित शास्त्री वेदांतियों के साथ कंसल्ट किए, परामर्श किए कि मैं क्या करूँ, मुझे तो नहीं चाहता था लेकिन मेरे ही नौकर था, कैसे प्रवचन में आकर के मुझे पानी फेंक दिया, और हमारे लोग मुझे बोलते हैं कि विधर्मी हो गया, पाप हुआ, मैं कैसे संस्कार करूँ, प्रायश्चित करूँ ताकि मैं हिंदू रहना चाहता हूँ। सब पंडितों ने शास्त्र ऋचा निकाल करके देखे, पढ़ पढ़ के बोले देखो एक ही विधान शास्त्र में बताते ना, क्या आप एक शेर गाय के घी ला करके बिल्कुल गर्म करो, जब खोलता हुआ घी सारे पी जाओ, उसका मतलब मरना ही है, मृत्यु दंड ही दे रहे थे, बोले मर ही जाओ आपने, बताओ उनका गलती भी कुछ नहीं था, वो तो पागल होकर घूम रही, बोली क्या सारे बोलते हैं कोई उपाय नहीं, अरे मेरा कुछ गलती नहीं है, उन्होंने कोई पानी फेंक दिया, मेरे इसे पाप हो गया, मुझे मरना ही पड़ेगा। इस प्रकार बड़े दुखी होकर के इधर से इधर घूम रहे थे, श्री चैतन्य महाप्रभु तो वृंदावन यात्रा में जा रहे थे, बनारस में थे, तो उनके पास कोई सुने कि ये भगवत पुरुष है, कीर्तन करके जा रहे हैं, तो उनको देख करके बड़े रुद्ध होकर जाकर उनको प्रणाम किए, शरण में बोले मैंने इसे सुना आप बड़े महापुरुष है, मुझे थोड़ा मदद कीजिए ना, क्या मैं सुविधा, बोला आप सुविधा है बंगे के पहले रहना, हाँ मेरे साथ तो गद्दारी करके मेरे नौकर ने मुझे राज्य छीन लिया, ऐसे ऐसे किया मेरे साथ, अभी हमारे हिंदू समाज मुझे इस प्रकार बहिष्कृत किए हैं, अब नहीं मानते पाप क्या करना। तो भगवान हंसने लगे, बोले कोई बात नहीं मैं बताता हूँ, ये क्या मरने का प्रायश्चित है वो क्या नहीं जानते, आप सीधा उनको भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बोले हो गया प्रायश्चित, जाओ जा वृंदावन जाओ, मस्त रह के भजन करो, आप भक्तों के लीडर होंगे, जो भक्त लोग जाएंगे उनको देखभाल करना वही रहना, ये उनका पास छोड़ो, वो लोग यहीं पढ़ के बंगाल में रहते हैं, उनको जाके वृंदावन वास करो, कितनी बड़ी पदवी आपको मिलेगा। तो नाम के साथ व्रज प्राप्ति हो गया उनका, भगवान ने स्वयं दे दिया उनको। ऐसे एक कथा आता है बनारस में, एक बड़े संत रहते थे कबीर जी, तो उस जमाने में एक व्यक्ति का अनजाने में उनके घर में गोबद्ध हो गया, गोहत मतलब पहले जमाने में जो गाय रखते थे गृहस्थ लोग, वो बांध कर रखते थे रस्सी में, तो किसी कारण से वो बंधे बंद था घर में सोए थे, रात को मर गया था, कोई बीमारी था क्या हुआ तो मर गया, सुबह देखा कि गाय बंधा हुआ है मर चुका है, तो पंडितों को बुला गया, पंडित बोले दोष गोहत्या दोष लगा, क्योंकि गले में रस्सी है, अगर मर गया तो दोष आपका है, फिर क्या दोष है प्रायश्चित, अरे बड़ा भारी प्रायश्चित, ऐसे ऐसे बताने लगे, 12 साल तक ऐसे करना पड़ेगा, रस्सी लेकर घूमना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, तो कई वो तो बेचारा पागल होकर के वो भी गया, और कई पंडितों के पास कई बात बता, तो किसी ने बताया कर कबीर जी संत है उनके पास चले जाओ ना, तो उनका बड़ा सत्य तो कबीर आश्रम में चला गया, तो कबीर जी तो बाहर गए थे, उनके शिष्य थे, तो उनके पास जाकर पहुंचे, रो रो कर ऐसे ऐसे करते हैं, कुछ उपाय बता दो यार मेरे प्रायश्चित के, मेरे अज्ञात सर में ऐसे, बोले कोई बात नहीं आप जाओ राम 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 कह करके गंगा जी में डुबकी लगाओ जाओ घर, हो गया प्रायश्चित। तो उनने 3 बार राम नाम लेकर के गंगा स्नान करके फिर चला गया, बोले कबीर संत कबीर बोले कि हो गया प्रायश्चित। तो दोपहर के बाद कबीर जी आए आश्रम में, कमाली बोला क्या बात ना है ठीक ठाक है, बोले क्या है आज ऐसे एक व्यक्ति आया था उसको हत्या दोष था उनका, और इसे इसे प्रायश्चित के लिए बहुत लोग उनको गुमराह कर रहे थे पंडित लोग, मेरे पास आया तो आप तो थे नहीं, तो मैं आपसे जो सीखा सुना हूँ उनको बता दिया। बोले क्या बताया उनको, बोला राम 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 बोलो जाकर गंगा डूब के लिए चले जाओ। बात सुन कबीर जी ने एक थप्पड़ मारे उसको, बोले तुझे इतना पढ़ा लिखा फिर भी गलती, बोला बोला प्रेस्क्राइब मेडिसिन गलती दे दिया। बोले गुरु जी क्या गलती हो गया, मैं तो यही बोला था बताओ क्या करते, गलती बता नहीं चलो उनका, बोला इतना हाई डोज क्यों कर दिया, अरे एक नाम तो काफी था 3 बार क्यों कर दिया एक बार बहुत था उनके लिए इसलिए तू इतना 3 बार क्यों दे दिया, ये गोहत्या तो कुछ भी नहीं था एक नाम के लिए। बोलते हैं अरे एक नाम भी नहीं, राम शब्द पूरा वचन ने रा कह दिया आज, और 10-20 साल के बाद किसी कारण से माँ कह दिया, बोले तब भी माना जाएगा ना, और तो और, वो तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि, आपसे पता होगा, वो स्वयं रत्नाकर थे, प्रसिद्ध है उनके बाद में। उनको राम शब्द ही उच्चारण नहीं कर पाते थे, उल्टा बोले, उल्टा नाम जपते जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म ऋषि बन गए, मरा मरा बोलते हुए उल्टा बोल करके, चाहे उल्टा बोलो चाहे सीधा बोलो चाहे कैसे भी बोलो। तो उन्होंने तो विवश होकर के नारायण नाम उच्चारण किया, ये जो चार अक्षर नारायण उच्चारण किया, ये भले किसी के निमित्त से हो, किसके लिए हो, किसी प्रकार से हो, वो तो हमारे प्रभु के महा पाप विनाशिनी महा फलदायिनी हमारे प्रभु के प्रिय नाम है। प्रभु सुनते ही तुरंत अपना मान लिए उनको, आत्मीयबुद्धि करते हैं उनके पास, तो उनको कैसे आप अरेस्ट करके ले जाना चाहते हैं, वो अन्य छोड़ो, उनको रिलीज करो। आपको पता नहीं इस संसार में जावतीय प्रकार के पाप क्यों ना हो, कितने भारी से भारी पाप हो, जितने प्रकार के पाप शास्त्र कहते हैं आप जानते सुनते, सभी प्रकार के पाप के सर्वश्रेष्ठ समुचित प्रायश्चित भगवत नाम उच्चारण मात्र है। और आप उसके लिए कहते हैं कि वो प्रायश्चित विधान नहीं किया, आपको ये भागवत धर्म का कुछ भी नहीं पता है, कैसे धर्मराज है वो, केवल यही पढ़ा, आपकी बात पता नहीं आपको। ऐसे भागवत धर्म का व्याख्यान बता तो बोले, अरे ये तो क्या, ये तो नारायण विवश होकर के लिया, सांकित्यंग पारिहास्यंग वा स्तोवंग अवहेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणं अशेष अघंघरंग विदुः। बोले अरे कोई व्यक्ति अगर संकेत से भगवत नाम ले ले, सांकित्यंग, संकेत जानते ना, जैसे वो देखिए ये चंद्रमा किधर ना, वो इधर है, इधर के ना पेड़ के ऊपर है, ये पेड़ के ऊपर देखो ना, पेड़ के ऊपर चंद्रमा थोड़ी है, लेकिन इशारा करते हैं कि इस दिशा से देखो। तो इसी प्रकार कोई संकेत में भगवत नाम ले ले, जैसे आप लोग, अरे ये हरे कृष्ण वाले तो है, वो इशारा किया, उनको बोलने का नहीं था, लेकिन किसी को बताने के लिए बोलता है, हरे कृष्ण मंदिर के साइड में चला जाना, यहीं पे है तो उनका मकान। तो कोई बात बोलने के लिए इशारा करके बोल दे भगवत नाम, तब भी पाप नाश हो जाएगा, नाम माना जाएगा। संकृत्यंग पारिहास्यम, कोई परिहास में, ठट्टा मजाक में क्रिटिसाइज करते हुए, क्रिटिसाइज करते हुए ना, क्या हरे कृष्ण करते रहते हैं, कोई गाली दे करके इसे इसे भी कह दे, तब भी भगवत नाम हो जाता है। संकृत्यंग पारिहास्यंग स्तोभ, कोई ताल संगीत के साथ ताल लेने के लिए और अवहेलना करते हुए भी, नेग्लेक्टफुली कोई भी नाम ले ले, तभी भी अशेष अशेष पाप निशेष हो जाएगा, ये सारे पंडितों का कहना है, शास्त्रों का कहना। अरे उन्होंने तो इस अवस्था में इतने विवश होकर विकल होकर के नाम उच्चारण किया, तो उनका पाप रहा कहां, पूर्ण निष्पाप है, आप उनको जमदंड करने नहीं जाते, बंद करो उसको, जबरदस्ती उसको छुड़ा दिए। बोले अरे इतना ही नहीं, ये सुन लो, अगर कोई पतित गिरने की अवस्था में स्खलित, उसकी छात से कोई गिर पड़ता है, हटात डर मरे हो मर जाऊंगा, गिर गया पैर फिसल गया, स्खलितम अवस्था में कोई विवश होकर के डर के मारे भगवान का नाम ले ले, कोई रास्ता में सांप देखा, सांप काट रहा था इसलिए डर के मारे भगवत नाम ले ले, मृत्यु दंड कोई दंडित, किसी प्रकार के विपन्न विपद के सामने, विपद के मारे कोई अगर भगवत के नाम डर के मारे भी ले ले, तो भी उनका इस विपद कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जद विभेति स्वयं भयं, मतलब भय भी जिसको भयभीत होता है ऐसे भगवत नाम। आपन्न संस्कृति घोरे जन्नाम विवसे गुणन, इस प्रकार घोर संस्कृति चक्र में इस दुख में पड़ करके बड़े विवश होकर के, नहीं भगवत नाम लेना नहीं चाहता था, इच्छा भी नहीं कि उच्छा नहीं, चाहता भी नहीं, लेकिन क्या करे कि होपलेस, डर के मारे ले लेता। तो ऐसे ही विवश अवस्था में कोई ले ले, तभी भी उनका विपत्त हो ही नहीं सकता और कई जन्म के पाप नाश हो जाता है। तो इस प्रकार किसी भी अवस्था पर लिया जाए। और उन्होंने तो कई बार लिया और ऐसे भी लिया अभी भी, तो इसलिए पूर्ण निष्पाप है, उसको अब ले नहीं जा सकते, छोड़ो उसको। छोड़ करके, छुड़ा करके उनको जमराज के दूतों के हाथ से उसको खोल दिए। खोल करके बोले जाओ। जमराज के दूतों तो मानो खड़े होकर चुप कर ना देखते सुन रहे थे। अभी तक तो प्रमाणित करके बता दिए, बोले बकायदा ये बिल्कुल क्लियर, इसमें है ही नहीं कोई पाप, निश्चिंत है और जा नहीं सकता, छोड़ो, गेट आउट। उनको निकाल दिए। उनके जीवन में पहली बार ऐसे हुआ, वारंट नोटिस इशू हुआ था, लेकर आए थे, प्रिंटआउट भी लेकर आए थे और उनको अरेस्ट कर चुके थे, हैंडकफ खोल दिया गया और खाली हाथ वापस जबरदस्ती उनको डांट मार करके भगा ही रहा है ये लोगों को, तो क्या करे, नहीं तो पीटेंगे मारेंगे, क्योंकि धमकी देकर भगा दिया उन्हें। जमराज से दूतों ने बड़े आश्चर्य हो करके इस प्रकार के व्यवस्था से वो लौट करके गए, बोले जा करके सार को बताएंगे ये क्या चल रहा है सब। ऐसे मूड में गए, जब जमदूतों ने चले गए इसे करके श्री सो करके, तब अजामिल तो सारे सुन रहा था, जमदूतों का पूरी बहस सुना था, विष्णुदूत का पॉइंट भी सारे सुना, दोनों पक्ष का बात उन्होंने संवाद सुना था सो सो करके। अब जैसे जमदूत चले गए, बोलो ये बदमाश लोग खतरनाक तीनों गए, लेकिन अभी वो चारों जो वैष्णव खड़े थे उनको देख करके इतने मन प्रसन्न हो रहा था कि मंगल मूर्ति थे वो, लेकिन उनसे मस्त झुका करके प्रणाम किया, कुछ बोलना चाह रहा था, इतने वो भी अंतर्धान हो गए, उन्होंने बात नहीं की, उनको छुड़ा दिए जमबंधन से, छुड़ा करके चल दिए वो लोग, वो चार भी चल दिए। लेकिन थोड़े समय उनका दर्शन हो गया था, उनके वाणी सुन गया था, उनके ये प्रभाव था, इसी को शास्त्र कहते हैं सत साधु संग सर्व शास्त्र कहे, ऐसे साधुओं के संग लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, सिद्धि हो गया, थोड़े मात्र उनका संग मिला, ऐसे वैष्णव की दर्शन किया और उनसे सुना सिद्धांत, अब इतने उनको साधन प्राप्त हो चुका था, शक्ति प्राप्त हो चुका था। उनने शांति से जब दोनों पार्टी चले गए, उन्होंने सोचने लगा क्या ये मैं सपना देख रहा हूं या ये सच्चाई है, या मैं मर रहा था, मैं सो रहा हूं क्या, देखा कि तो दिन में तो इसी हूं, अरे सचमुच। उन्होंने उठ करके बैठा, क्यों, क्योंकि इतने पाप किया था ना, करते जा रहा था, प्लस माइनस करता था, तो इसी के कारण आयु घटते चला गया था उसका, आयु घट करके अभी ये अभी मरने का अनुभव मर ही रहा था, तो जमराज पकड़ के ले ही रहे थे, बांध लिए थे, डेथ हो चुका था मानो, लेकिन अभी बच गया, क्यों, बोले उनके वो विष्णुदूत ने आकर के बोले काट दिए, करेक्शन कर दी, बोले नहीं इसको गलत है, करेक्शन कर दिया, उनका आयु जितने थे ना वो फिर बढ़ गया, बोले नहीं उसका जितना आयु था घटा क्यों, घट नहीं सकता, पाप है ही नहीं, घट नहीं सकता, करेक्शन करके उनको बढ़ा दी, तो इसलिए जी कर बैठा। आपने खटिया पर उठकर तो बैठा, बैठ करके चारों ओर देखा, बोला बीबी अभी कहाँ गई है बुढ़ी, अब बेटा सुबह देख के खेल रहे, बच्चा इधर भी खेल रहा है, लेकिन आपने का बारे में सोचने लगा, बोला हाय है, क्योंकि दोनों वचन सुन चुका था ना, दोनों के संवाद सुन कर जामी लगे, आपने आप विचार कर रहा है, बोला हाय है मैं क्या था, अभी उनका सारे याद आ रहा है, मैंने बचपन में कैसा था, कितने कुलीन ब्राह्मण था, कितने सम दम पवित्रता त्याग निष्ठा में रहता था, शास्त्र अध्ययन करता था, एक बार इस गलत संसर्ग में आकर के मेरा कितने दुर्गति हुआ, ब्राह्मण कुल को त्याग दिया, मेरे तपस्वी माता पिता के एक लत्य पुत्र थे उनको छोड़ दिया, सेवा नहीं किया, सती साध्वी कुलीन मेरे पत्नी थी उनको त्याग दी, इस कुलटा मध्यपायिनी शिक्षाचारिणी वेश्या के साथ में आकर के संसर्ग, क्या क्या मैंने, कितने मेरा दुर्गति हुआ, कितने पाप ने किया, क्या क्या इतने पश्चाताप करने लगा, आपने को धिक्कारने लगा, बारंबार रोने लगा बैठ करके, बहुत रो रो करके बोला मैं इतने गलती किया हूं, इतने पाप किया हूं, मेरे से तो नरक क्या, कितने नरक में कितने बार भी मुझे दंडित करे मेरे प्रायश्चित नहीं है, हाय हाय, मैं तो ब्राह्मण मेरे कुल का कलंकित किया, कुल कुलंगार है मैंने, क्या किया मैंने, कितने मेरे तपस्वी जैसे माता पिता थे, मैंने क्या किया। बड़े पश्चाताप करके रोने लगा, खूब अनुताप किया, हाय हाय क्या हो गया मेरा, इतनी दुर्गति कैसे हो गया। खूब घंटों भर तो धिक्कार करके आंसू बहाया, पश्चाताप किया, पश्चाताप के आग में उनके हृदय बिल्कुल जल भूंग करके शुद्ध हो गया। अब आंसू पोंछ करके देखा कि वो तो है ही नहीं, चले गए, ये भी नहीं वो भी नहीं। अब मन में निर्णय किया, जो किया किया। अब उन जो चार महापुरुष आए थे उनके दर्शन पा करके, उनके वाणी सुन करके मेरा इतने मुझे बल मिल चुका है, मेरा आयु बढ़ चुका है। अब जितने समय तक मैंने बचूंगा, अब तो मेरा संपूर्ण शक्ति सामर्थ्य बुद्धि वृत्ति को इधर उधर करना नहीं दूंगा, अब छोड़ो, अब कुछ नहीं, अब तो सीधा। अभी तक तो भगवत नाम की महिमा के बारे में खूब सुन चुका था, दोनों के संवाद सुना था, क्या डिसीजन जमराज बांध के ले रहे थे सुना था। अभी इतने अनुतप्त, इतने सिद्धांत पहुंच चुका था, डिसीजन लिया, बोला ना अब तो नहीं हो सकता, अब तो मैंने मर ही रहा था, जमदूत पकड़ के ले जा रहे थे, इस महापुरुष ने आके मुझे बचा दिए चले गए पता नहीं। लेकिन मैं तो अभी समझ गया कि भगवत नाम का कितनी महिमा है भगवत नाम। मैं तो भगवत नाम जानता नहीं था, मेरे बेटा को समझ करके उच्चारण किया, जिसके कारण भगवान आपने पर्सनल आदमी भेज दिए, बोले जाओ पकड़ो उसको, रुको ये क्या कर रहे, मुझे आकर बचा दिए। ये भगवत नाम का यही शक्ति है, भले आप ज्ञात सार में हो अज्ञात सार में हो। विष्णु दूत ने कहे थे उनको, बोले अरे, बोले वो जान करके थोड़ी लिया, भगवत का नाम लेता, बोले भगवान का नाम ये बेटा का नाम ले रहा था, बोले अरे मूर्खो, अग्नि है, उनको उदाहरण दे, अग्नि को कोई बच्चा है जानता नहीं आग क्या है, जाकर पकड़ लेगा आग क्या, ये सोचेगा ये बेचारा नादान बच्चा है, अग्नि के तत्व उनको पता नहीं है, तो उसको मैं जलाऊंगा नहीं, छोड़ देगा क्या, ना जला देगा। विष है, कोई जानता नहीं ये विष है कि नहीं, अनजान में पी लिया, क्या वो अच्छा करेगा, अरे विष तो अपना काम ही करेगा, क्योंकि वस्तु शक्ति है, ये वस्तु का शक्ति तो प्रभाव दिखाएगा ही। ठीक इसी प्रकार भगवत नाम जो वस्तु है उसका शक्ति तो है, चाहे जान करके लो अनजान करके लो कैसे भी लो, वो तो अपना काम करेगा ही। तो इसलिए किसी प्रकार, चाहे अपने बेटे के लिए लिया हो, बेटी के लिए, किसके लिए लिया, अगर भगवत नाम उच्चारण किया, वो भगवत नाम की वस्तु शक्ति है, वो अपना काम करेगा, वो तो पूर्ण सुधार करेगा उसको। तो इस अद्भुत नाम उच्चारण महिमा को जो सुन चुका था और विष्णु पार्षदों के मुख से सुन चुका था, अब इतने आश्वस्ति हो करके आपने कुशित कर्म के प्रति इतने ग्लानी हुआ, इतने पश्चाताप किया, इतने पश्चाताप करते करते रोध हो करके उठा, खड़े हो करके आंसू पोंछ करके और घर की ओर दिखाई नहीं, बीवी बच्चे को दिखा नहीं, सीधा घर से निकला, निकल करके सीधा उत्तर दिशा पर चला, चलते चलते सीधा हरिद्वार चला गया, गंगा द्वारम। हरिद्वार में जा करके ढूंढ करके एक देव मंदिर था जहाँ नारायण के प्रतिमा उपासना होते थे, इस नारायण मंदिर में जाकर शरण लिया। उम्र हो चुका था, इसे 88 साल हो चुका था बुढ़ा, इसी मान में तो कोई मंदिर में न्यू भक्त प्रोग्राम में लेंगे ही नहीं, लेंगे नहीं, 28 साल वाला कौन लेगा अब तो नोटिस में लगाते हैं इस उम्र से इस उम्र तक, अब 88 साल दांत भी नहीं होगा, चश्मा भी उतर गया होगा तो कौन लेगा उनको भक्त प्रोग्राम में। लेकिन भक्त प्रोग्राम में नहीं, वो तो जा करके भगवान शरणागत, बोले मुझे खाना दो या ना दो, मैं तो इसी मंदिर के शरण में रहूंगा, अगर जो मेरे से सेवा बन पड़गा करूंगा। और सेवा क्या, नियम करके बिल्कुल संकल्प पूर्वक, व्रत धारण पूर्वक त्रिकाल संध्या 3 बार गंगा जी में स्नान करते थे, उठ करके भगवान की आरती में भाग लेते थे और नित्य प्रति केवल भगवत नाम जप करने लगे। भगवत नाम जप करने के लिए बस, कोई भोजन मिले चाहे ना मिले, गंगा जल पीते थे, जप करते थे, कोई अगर प्रसाद मिल गया तो सही, कपड़ा लता और कुछ कुछ जरूरत नहीं था, कुछ नहीं चाह रहे। बोले ना, मतलब मर ही रहा था, मर चुका था। मरने वाला कह रहे ये डिमांड क्या है, कोई डिमांड नहीं, केवल एक ही मुझे, अभी मरते दम तक जितने तक तो मेरा प्राण वायु बाहर नहीं जाता तब तक एक क्षण भी बेकार नहीं करूंगा, बस गंगा जी के शरण भगवत नाम शरणम। गंगा जी चरणा दुख है भगवत चरण, तो इसमें स्नान करके शिव विग्रह के सामने बैठ करके बस नाम जप करने लगे। इतने विश्वास हो चुका था सुन करके उनके संवाद को, उनके दोनों के बहस सुन करके इतने दृढ़ विश्वास आस्था जम चुका था। अरे मैं बेटा का नाम पुकार लिया, भगवान के आदमी आकर मुझे जमदपास से खोल करके छुड़ा दिए। अब जिनका प्रैक्टिकल उनका सामने घटना घटी होगा उनका कितने बड़ा विश्वास हुआ होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। अब तो कोई सब छोड़ करके पूर्ण विश्वास के साथ भगवत नाम करने लगा। करते 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 इतने लगन लगा, और सचमुच हमारा लगन लगता नहीं कि नाम में हमारा टेस्ट नहीं है, टेस्ट एक बार मिल जाए ना तब तो फिर हम छोड़ ही नहीं सकते। तो उनको टेस्ट मिल ही गया था, साक्षात विष्णु पार्षद आकर के नाम के चकमा उनको दिखा दिए थे मरते समय में, वो टेस्ट मिल चुका था, तो इसलिए अनवरत नाम लेने लगा हरिद्वार में रह करके, और कुछ ही साल तो हरिद्वार में रह करके इस साधन करने लगा। एक दिन गंगा जी से एक बार वृद्ध हो चुका था, एक बार गंगा जी से स्नान करके आता था, चल नहीं पाता था, शक्ति नहीं था चलने में लिए, बड़ा बुढ़ापा बीमारी ग्रास कर चुका था, लेकिन फिर भी हर क्षण नाम लेता था और आता था चल के थर थर कांपते कांपते। आते समय में रास्ता में देखा वो जो चार पुरुष फिर दिखाई पड़े, आप हाँ हम ही जिनको उन्होंने पहले देखा था, वो आ करके डांट पीट कर जमदूत को उनको छुड़ा के बचाए थे, उन चारों को फिर देखा, लेकिन आज तो उन्होंने गाड़ी लेकर आए, खाली नहीं आए थे, अपना गाड़ी लेकर आए थे, वैकुंठ विमान के साथ आए थे वो चारों। बोले आओ हो गया आपका टाइम। उनको जैसे देखा तुरंत देखते ही आपने जो इस मर शरीर इस भौतिक शरीर गिर पड़ा, शरीर छूट गया, उसका शरीर छूट गया, इस भौतिक शरीर से निकल करके उनके सूक्ष्म शरीर अब बिल्कुल वैकुंठ पार्षद शरीर में आ गया। भगवत पार्षद शरीर वही जो पार्षद आए थे, ऐसे चतुर्भुज शंख चक्र गदा पाणी ऐसे इन फिर में आ गया, आ करके वैकुंठ गाड़ी में बैठा, वो जो गाड़ी लेकर आए थे वहां का गाड़ी इम्पोर्टेड, यहाँ का गाड़ी था नहीं, इस गाड़ी में बैठा और सीधा वैकुंठ गमन किया। इस प्रकार अजामिल के जो वैकुंठ गमन हुआ, और जमराज के दूत वो तो गया, विष्णु दूत चले गए वहां, वो जाकर हरिद्वार में वर्ष भजन करके वो वैकुंठ गमन किया। जमदूतों का हाल हुआ, वो तो यहाँ बुरी तरह से घायल अपमानित होकर गए थे, लाल पड़ करके गए थे, बोले आज तो रिजाइन करेंगे नहीं तो देखेंगे जो नौकरी क्या है, हमने इसी प्रकार की बिज्जती, हाथ से खींच लिए रस्सी छोड़ दिया, भगा दिए, मारे नहीं, बड़ी बात है, नहीं तो पीटते। तो इसलिए बुरी तरह से अपमानित घायल होकर जाकर जमराज के पास पहुंच कर बोले सार ये बताइए। जमराज बोले हुआ क्या, ऐसा क्या बताऊं सार, ऐसे सारे एक सांस में सब बता गए, जो जो हुआ था हू बहू डीटो घटना सब बता दिए, कैसे ऐसे हुआ बता करके बोले जमराज अब ये बताइए, हम तो अभी तक माने थे सार आप ही है सबसे बड़े अफसर, ये पहले बताओ आपसे कोई बड़े और है क्या, हमको अभी तक नहीं बताया, सच्चाई बताओ अभी, हम तो फंसे धोखे में, आज पिटाई होता हमारा तो, ऐसे ऐसे केस हो गया। जब इस प्रकार से जमराज के सभा में जाकर जमदूतों ने जमराज के सामने इस प्रकार के बता करके उनके, तब जमदूत ने उसको पहले बैठो 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 उनको बैठा कर जमदूत ने अपने प्रवचन शुरू करेंगे, जमराज ने क्या बताएंगे अब ये बात काल चर्चा करेंगे। अभी तक तो जमदूतों का क्लास एक दिन सुने, आज विष्णुदूतों का प्रवचन हुआ, अब काल फाइनल डे में जमराज के प्रवचन सुनेंगे, वो क्या बताएंगे उनके दूतों के सामने, बोले नहीं तो बोले तो गुस्से में रिजाइन करने वाले थे, है ना। साक्षात धर्मराज द्वादश महाजन में से एक महाजन जमराज आपने फाइनल डिसीजन देने जा रहे हैं आपने स्टाफ के सामने, आपने स्टाफ बड़े हैं जिनको मानो जीत होकर आए उनको बैठा कर बोले गुस्सा में थे बैठा करके स्टाफ को बुला रहे हैं। वास्तविक केवल कमी है विश्वास का, केवल विश्वास की कमी है। केवल विश्वास मात्र हो जाए तो विश्वास श्रद्धा के साथ कोई भगवत नाम ले तो अभी तक ऐसा कोई हुआ, कोई इतिहास पुराण किसी प्रकार से खोल करके देखो केवल इसी के चलते। अब सूरदास जी तो यहां तक खोलकर बोलते हैं, एक पद में बोलते हैं कि जब से सृष्टि हुआ है अभी तक, जब से सृष्टि हुआ है अभी तक एक भी कोई पुराण इतिहास में रिकॉर्ड में है ही नहीं, एक भी इंस्टांट, कोई एक भी एविडेंस नहीं है कि किसी ने किसी भी प्रकार से किसी भी परिस्थिति से भगवान के शरणागति ले लिया और उनका उद्धार नहीं हुआ, एक भी उदाहरण नहीं। फिर भी और भी एक उदाहरण नहीं क्या ना, जब से सृष्टि शुरू हुआ है अभी तक एक भी उदाहरण नहीं है जो भगवान को छोड़ करके बाकी कोई देवी देवता असुर और किसी किसी का शरणागति ले लिया उनका उद्धार हो गया, ये भी एक उदाहरण नहीं, एक भी नहीं। इतने बड़े से बड़े महाप्रभावशाली और बड़े बड़ों का सब शरणागति हुए, सब गए, किसी का उद्धार नहीं हुआ। और जो किसी भी प्रकार से छोटे मोटे क्यों ना हो भगवान की शरणागति हुआ उनका उद्धार का कोई शंका ही नहीं, निश्चित। ये सब जान करके सुन करके इतने सैकड़ों प्रमाण होते हुए भी फिर भी लोग नहीं मानते हैं, अपने दुर्गति करने के लिए दूसरे दूसरों की शरणागति में जाते हैं, दूसरे की जाकर के सम्मान को जा करते हैं, इसमें है क्या, कुछ नहीं। तो इसलिए एकमात्र सारे संत महंत शास्त्र महाजन एक साथ में भागवत में ही कहा जाता है किसी भी अकाम सर्ग काम कामो वा मुख्य काम उदार थी, आपको कुछ चाहिए तभी, कुछ नहीं चाहिए तभी, और मुख्य प्राप्ति चाहिए तभी, कुछ भी किसी भी प्रकार से केवल तीव्र भाव से भगवत भक्ति करो सब कुछ प्राप्त होगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ये प्रमाण भरा पड़ा है। ध्रुव महाराज सकामी भक्त थे, ध्रुव महाराज बच्चे थे ना, 5 साल के बालक थे और उनको अपमानित किया गया, उनके विमाता ने उसको अपमानित किया, उनके पापा ने उसको मदद भी नहीं किए, गुस्से में आकर के माँ के पास आया, माँ बेटा दोनों रोए, रो धोकर माँ बोला तो क्या हमें भी क्या कर सकती हूँ, तो भगवान के शरण में जा। वो बोला भगवान भगवान कहाँ है बताओ, पता नहीं था बेचारा, 5 साल भगवान तो मैं सुना कि वो जंगल में रहते हैं, ऋषि मुनि से जंगल में जाते हैं, मैं अभी जंगल में जाऊँगा, जंगल क्या है उनका एक्सपीरियंस ही नहीं था, टीवी में भी देखा नहीं था जंगल किस प्रकार होता है, टीवी तो था नहीं तभी जमाने में, लेकिन फिर भी चलने के तैयार हो गया। कैसे माँ है वो, एक बेटा उनका राजकुमार है, 5 साल की उम्र का है, आज जंगल जा रहा है, क्या खाएगा शाम को, कैसे सोएगा, कैसे नहाएगा, कपड़ा लता ब्रिप के साथ अटच भी साथ में नहीं लेकर जा रहा है, और माँ उसको विदा दिया चले गए। इतने प्रण करके गए, उनका आशा था राष्ट्र डिसाइड किया मेरे बाप के बाप से बड़ा राज्य लूंगा। अब जाकर भगवत शरणागति किया, इतनी दृढ़ता से 6 महीने में काम करके दिखा दिया, 6 महीने। अब दूसरे पुराण शास्त्र में क्या देंगे आप बोलिए, वो पता नहीं सत्य युग क्या सब शास्त्र पुराण में आजकल होगा कि नहीं, मैं आजकल के उदाहरण बताता हूं आपको, प्रभुपाद जी ने लिखे इस बात को, बोले ये अभी का, बोले मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, नारद जी बता, मैं बता रहा हूं, बोले मैंने 1966 में अभी 40-50 साल बोले मैं गया अमेरिका, अभी अमेरिका के लोगों को राम कृष्ण का नाम ही नहीं पता था, हो कौन कोई वो पता नहीं था, कुछ नहीं जानते थे, कंप्लीट ज्ञान कुछ नहीं था उनका धर्म का, वो सारे महाशराबी अब लंपट दुराचारी, और जो जो पाप बाकायदा उनका दैनदिन जीवन यही था पापी जीवन, ऐसे दुराचारी पापी विदेशी नशेड़ी हिप्पी जरे वो नग्न हो करके यहाँ वहाँ समुद्र किनारे सब पीते थे नशा, इस दशा में थे प्रभुपाद ने जाकर के बेचारे बूढ़े अवस्था कुछ नहीं मिले जाकर के हरे कृष्ण जा, तो वो समझ नहीं पा रहे थे व्हाट इज हरे कृष्ण, वो क्या होता है नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन केवल इस हरे कृष्ण की धुन ने, वही कीर्तन साउंड, यही शब्द उनको ऐसे काम किया, थोड़े ही दिन में ये बहुत बड़े स्टेटमेंट अमेरिका तभी जो बहुत बड़े उनके नेता उन्होंने बोले हम तो अमेरिकन गवर्नमेंट सोच सोच कर थकी गए कैसे उनको बंदे लोग इसे पतित हो चुका, लेकिन ये वृद्ध बाबा जी आकर कीर्तन करके सब कुछ चेंज करा दिया। ऐसे उनको इम्पैक्ट पड़ा, वो सब हाईली एजुकेटेड थे, बड़े बड़े रिच फैमिली था उनको, बहुत धनी लोग थे, युवक थे और पढ़े लिखे बहुत थे, लेकिन केवल हरे कृष्ण के मंत्र के माध्यम से ऐसे परिवर्तन किए, 2 साल के अंदर बाल टकला करवा दिए, कपड़ा उतार के धोती पहना दिए, हेडलाइट लगा दिए, है ना। कोई साधारण मनुष्य को आजकल थोड़ा बाल काट दो राजी नहीं होते, लेकिन वो राजी होते, सर यंग थे, ऐसे बदल गए कि कुछ ही दिनों में आश्चर्य, सारे दुराचार दुष्कर्म पाप कर्म प्रवृत्ति छोड़ करके, जो 4 नियम है सब छोड़ करके, हरे कृष्ण कीर्तन करके और वैष्णव बन करके नाचने लगे। हमारे भारतीय लोग तो उन्हीं को देख करके बने, और नहीं तो क्या। हाँ, तो ये कमाल है। आज भी इसी कलिजुग के इसी 70s में भी इस प्रकार का होता है, भले कोई उनके अर्थ समझे या ना समझे, उनको पता नहीं था रामकृष्ण होते कौन कौन है, क्या नाम है, क्या अर्थ है, सम म्यूजिक मानकर गाते थे, लेकिन उसका प्रभाव ऐसे हुआ कि उनके चरित्र सुधर करके पूर्ण पवित्र संत बन गए वो लोग, संत बन गए। तो जब ऐसे अनाचारी बिल्कुल दुराचारी पापियों को जब इतनी जल्दी सुधार हो सकता है, आप लोग तो संस्कारी है, भारतवर्ष के नागरिक, आप अगर इससे ठीक श्रद्धा विश्वास लेकर उसको ग्रहण करेंगे वो करेंगे तो नहीं होगा, कैसे नहीं हो सकता, उसका प्रभाव तो निरंतर नित्य हमेशा है। लेकिन कमी है कि हम नहीं मानते, उसको विश्वास नहीं है, दूसरे दूसरे चीज पर जितने विश्वास है इसमें नहीं है। आपन न संस्कृति घोरे, कुछ विपद आ जाए भगवत नाम मुंह से नहीं निकलेगा, रास्ता में चलते समय कोई पत्थर में पैर लग गया मुंह से क्या निकलेगा, ई माँ ई बाप, यही होगा ना, राम नाम नहीं निकलेगा ना। भले मंदिर में आकर के सोना माला जप करेंगे, लेकिन जरूरत के समय में वो नहीं नाम निकलेगा। प्रभुपाद कहते हैं जैसे तोता होता है तो उसको पिंजड़े में रख करके खूब सिखाओ, राम नाम पूरा जपेगा गाएगा, जिसे बिल्ली आएगा पकड़ेगा तो चे करेगा, राम ने स्वभाव मानते नहीं, विश्वास के साथ अगर करें कि ही है, और ऐसे करें इतने हद तक करें ताकि किसी भी विपद के समय में, बीमारी के समय में, आवश्यकता समय में मुख में और कोई शब्द ना निकले, हे राम हे कृष्ण हे नारायण हे गोविंद हे गोपाल, इस प्रकार के शब्द निकले। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि द्रौपदी ने वस्त्र हरण के समय में 2 बार मैं दूर में था करके 2 बार करुण स्वर में रोते हुए हा गोविंद बोल दिया, मेरे ऊपर इतने ऋण चढ़ गया, अभी तक मैं ऋण उतार नहीं पा रहा, 2 बार बोल दिया, मुझे लेट हो गया पहुंचे। गजेंद्र उदाहरण, गजेंद्र मुख्य में तो भगवान के ऐसे वर्णन महात्मा ने कहते हैं, गजेंद्र ने पूरा नाम नहीं बोल पाया, आधा नाम बोला था, नारायण इति अखिल गुरु भगवान नमस्ते, एक फूल उखाड़ करके मरते समय बोला नारायण, और दो अक्षर बोला ही नहीं था, आधे नाम से भगवान ने चप्पल फेंक करके अपने कपड़ा फेंक करके भागे, अपने गाड़ी के बोले तो स्पीड कम पड़ता है, गरुड़ जी में आ रहे थे, गरुड़ जी बोले तो स्पीड कम है, गरुड़ जी का स्पीड कितना पता ना, मन की तेज से जाता है, मन कितने तेज चलने वाला, अब यहीं बैठे 1 मिनट में 5 बार अमेरिका जाकर वापस आ जाएगा, इतने तेज मन के गति, बोलो तेज से उससे और तेज गामी गरुड़ थे, लेकिन भगवान उससे चलकर बोलते गरुड़ तू लेट चल रहा है, मर जाएगा, बदनाम होगा मेरा, और क्या, पहुंचते पहुंचते गरुड़ को छोड़ करके आपने कपड़ा फेंक करके दौड़े भगवान, आपने तेज से आपने गियर से चले आ करके तुरंत बचाए उनको, पूरा नाम उच्चारण करने से पहले आकर बचा दिए। ऐसे कृपालु ऐसे समर्थ भगवान के शरणागत न जा करके हम लोग को इसी लल्लू पंजू में किसान आना चाहते। ये शास्त्र उद्घोष करके कहता है अगर किसी भी प्रकार से कोई भी जीव अपना कल्याण चाहता है तो केवल ही केवल एकमात्र एक ही उपाय है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पूर्ण विश्वास श्रद्धा के साथ उसको कीजिए और उसका परिणाम किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, स्वयं को पता चल जाएगा बहुत ही कम समय में कि आप स्वयं का क्या परिवर्तन हो रहा है, किसी को पूछना नहीं पड़ेगा। बोले फिर पता कैसे चलेगा मेरा कुछ हो रहा है कि नहीं, मुझे अब कहूँगा तो बोले जैसे हम आप जितने बैठे हैं सब तो प्रसाद पाएंगे ना, खाना तो खा रहे अभी तक दिन में तो डेली दो तीन बार तो खाते खाना ही खाते तो होंगे ना। किसी भी दिन किसी भी बार खाते समय में किसी को पूछा भाई साहब मैं और खाऊं क्या, पेट भरा कि नहीं बताओ थोड़ा, कोई पूछा किसको ना, नहीं आपने हो गया बस हो गया, आपने आपको पता चल जाता है। ठीक इसी प्रकार है भगवत नाम, आप स्वयं लो तो आपने आपको पता चल जाएगा मेरा क्या स्थिति था, क्या अभी हो रहा है, क्या बन गया, कैसे का। इस प्रकार के सुधार समूल पाप वासना को उत्पाटित करके पाप बीज को उखाड़ करके समूल चित्त शुद्धि कर देना, नाश करना, कोई ऐसे प्रायश्चित क्रिया अभी तक है ही नहीं ना हो सकेगा। किसी भी कुछ चंद्रायण व्रत आदि कितने साधन कितने तपस्या कितने कुछ भी कर लो शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन हृदय के अंदर पाप वासना पाप बीज को शुद्ध करने का नहीं, फिर चांस उनसे फिर पाप कर बैठते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि कई हजारों हजारों साल तप करके फिर गिर गए, थोड़े से गड़बड़ी में। लेकिन जो भगवत नाम के शरणागति में है उनका तो फिर असंभव है, साक्षात माया देवी आकर के परीक्षा लेकर के चले गए, हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये काम बीज नाश कर देगा, पाप करने का प्रवृत्ति नाश हो जाए, इतने रूट से उखाड़ के शुद्ध कर देगा। ये महा शक्तिशाली साधन केवल है भगवत नाम उच्चारण। तो इसलिए पूर्ण विश्वास भरोसा के साथ अगर आप इसी को लीजिए, यथा शक्ति यथा समय यथा रीति यथा नीति अगर उसको कीजिए तो स्वयं आप अनुभव करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज इसी में रखते हैं, कल जमराज के प्रवचन सुनेंगे। हरे कृष्ण
Hare Krishna Krishna Krishna